أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها جمع الإحصاء عددها والناع الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله هي عليا. وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى صلوات بجيب محمد وآل محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جوان اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کل تک بات یہاں تک پہنچی کہ وہ جوانی جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے وہ جوانی جو ہمیشہ رہنے والی جوانی ہے वो जवान जो हमेशा तरोताजा रहता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, सिनोसाल की गर्द उस पर नहीं पड़ती है, वो जवान ऐसा जवान है जो साहिब ईमान है, जो जवानी ईमान के साथ होती है, वो जवानी कभी भी बुढ़ापे की समत नहीं जाती है, बल्कि जैसे जैसे सिनोसाल बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे उस जवानी में इजाफा होता चला जाता है। जो जवानी सिनोसाल के साथ आती है वो एक सिन तक रहती है और फिर ढलने लगती है, लेकिन वो जवानी जो ईमान के साथ आती है वो जवानी जैसे जैसे सिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जवानी में पुख्तगी आने लगती है। क्या है ये जवानी जिसे कुरान फुतुवत के नाम से याद कर रहा है और उस गुरोह को फितियान के नाम से याद कर रहा है, और कुरान मजीद इब्राहिम जैसे खलील उर रहमान को फतेह के नाम से याद कर रहा है, वो कौन सी जवानी है कि जिसको कुरान फतेह के नाम से याद कर रहा है? उसकी हकीकत क्या है? ईमान एक लफ्ज है जिससे हम और आप आशना है कमोबेश, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? कहां से शुरू होती है? कौन सा राबता बरकरार होता है जिसकी बुनियाद पर यह जवानी आती है? वक्त के वो राबता मालूम नहीं होगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये जवानी कैसे हासिल की जाए। अब हमारा मकसद और हमारा एम ये हो गया कि हमें वो जवानी हासिल करनी है जो कभी खत्म ना हो, चाहे वो हम सिनोसाल के एतबार से बूढ़े हो गए हों, चाहे हम अभी सिनोसाल के एतबार से जवान ही हो। अगर जवान है तो अभी से हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें वो जवानी हासिल हो जाए। हम कौन सा कदम उठाएं कि जिसकी बुनियाद पर हमें वो जवानी हासिल हो जाए? फुतुवत, जवामर्दी इंसान को कहां से हासिल होती है? ये फुतुवत है क्या? ये जवानमर्दी है क्या? इंसान को खुदाबंद आलम ने एक फितरत अता की है, नेचर अता किया है, उस नेचर को खुदाबंद आलम ने नूरानी बनाया है, लाइट दी है उसमें खुदा ने। हम उस फितरत और उस नेचर के ऊपर अगर तारीकी आने से रोक लें, अंधेरे को खत्म कर दें, और वो नूर जो फितरत का है वो हमारे पूरे नफ्स में जारी हो जाए। नफ्स में नूर आने का मतलब क्या है? यानी जितनी अच्छाइयां हैं वो सब हमारे नफ्स में आ जाएं और जितनी बुराइयां हैं वो सब हमारे नफ्स से खत्म हो जाएं, जो नफ्स की बलाएं हैं वो हमसे दूर हो जाएं, जो नफ्स की अच्छाइयां हैं वो हमसे नजदीक हो जाएं, और जब इस कमाल और इन अच्छाइयों का जहूर हो, सामने बाहर दिखाई दे अच्छाई, तो इस नूर के जहूर का नाम फुतुवत और जमामर्दी है। लिहाजा जब अलामत बताई जाएगी कि अलामत क्या है जमामर्दी की, तब वहां पता चलेगा। बस नूर जो खुदाबंद आलम ने हर इंसान की फितरत में दिया है, कुल मौलूदिन यूलदु अला फितरह, हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है। बाज लोगों ने इस्लाम बढ़ाया है बाज रिवायतों में, फितरत इस्लाम, इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है। हर की फितरत में तस्लीम है, इस्लाम है। ये माँ और बाप हैं जो फितरत से बच्चों की खिलवाड़ करते हैं, तो कोई बच्चा अम्मा अबावा हो यु हब्बदान ही और यु नसरान ही और यु मज्जसाने, ये माँ बाप हैं जो अपनी बुरी तरबियत के नतीजे में किसी को यहूदी बना देते हैं, किसी को नसरानी बना देते हैं, किसी को मजूसी बना देते हैं, फितरत के नूर को अंधेरे से छुपा देते हैं। جب فطرت کا نور براق رہے، اس کی لائٹ ایسی ہو جو نفس سے ہوتی ہوئی باہر ظاہر ہو دوسروں کے لیے، تو اسی فطرت کے نور کے ظاہر ہونے کا نام فتوت و جمع مردی ہے. یہ فطرت وہ ہے جو مروت سے حاصل ہوتی ہے. تا وقت کے انسان میں مروت نہیں پائی جائے گی، مروت نہیں پائی جائے گی، اس وقت تک فطرت کی سلامتی کا نام ہے مروت. مروت کسے کہتے ہیں؟ ابھی ایک نشد دو شد، ابھی تو فتوت کی بحث ہو رہی تھی، ابھی مروت آگے بیچ میں، ایک پوری داستان مروت کی بھی ہے. کچھ چیزیں وہ روش، وہ طریقہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے، وہ چیزیں جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے اس کا نام ہے مروت. اصل فطرت، اصل طریقہ جو مروت کا ہے، وہ حق سے متصل ہونا ہے صحیح فطرت کے ذریعے سے. صحیح فطرت کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا نام ہے مروت. اور صحیح فطرت کو جلا بخشنا، کمال بخشنے کا نام ہے فتوت. بس اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ عقیلو ذوی المروات، جو لوگ صاحبان مروت ہیں ان کے گناہوں کو قبول کر لو، ان کی غلطیوں کو قبول کر لو. فما یاسر منہم آسرا الا بیدہ بید اللہ یرفعہ. چونکہ جو صاحبان مروت ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، اگر کہیں ان کا پیر لڑکھڑاتا ہے، اگر کہیں ان کے قدم میں لغزش آتی ہے، تو خدا ان کے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب مروت ہیں. مروت وہ ہے، آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شان کے خلاف ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مروت. بے مروت آدمی کبھی بھی جوان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ لا مروت للکذوب. دیکھو جو جھوٹا ہے اس میں کبھی مروت نہیں پائی جاتی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اپنی شان کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کس رحمان کا بندہ ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا مروت کے لیے، آپ کو ایک بات بتاؤں، سڑک پر سینڈوچ کھاتے ہوئے، ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لیے ہوئے کھاتے ہوئے چلے جانے، کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی حرام کہے گا اسے؟ کوئی حرام کام نہیں. آپ تھکے اسکول سے نکلے، کالج سے نکلے، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے ایک سینڈوچ خریدی، ایک کولڈ ڈرنک خریدی، نکل گئے، اور بیچ میں کسی نے فون کیا جانا تھا تو دوڑتے ہوئے بھی چلے گئے. کوئی آپ کو کچھ کہے گا؟ آپ نے کوئی حرام کام انجام دیا ہے؟ نہیں. لیکن اگر یہی کام اگر امامہ قبا لگا کر میں انجام دے دوں سڑک پر، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا عدالت ساخت ہو جائے گی آپ کی، آپ کے پیچھے کسی کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھئی کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا کہ آپ کھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لباس پہن کے امامہ قبا لگائے ہوئے ہاتھ میں سینڈوچ لیے ہوئے کولڈ ڈرنک لیے ہوئے دوڑتے ہوئے کھاتے ہوئے چلے جائیں، تو آپ کہیں علماء نے فقہا نے سب نے کہا ایسے آدمی کی عدالت ساقط، اس کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے. کیوں؟ کیا ان سے گناہ کیا؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا، خلاف شان انجام دیا ہے، خلاف مروت انجام دیا ہے. کہا تمہارے گھر مہمان آیا، کیسے اس کی ضیافت کرو؟ یہ مروت ہے، اسے کہتے ہیں مروت. تمہارے گھر مہمان آیا، کیسے کھانا کھلاؤ اسے؟ دسترخوان بچھا دو، خود چلے جاؤ. یہ بمبئی کی زبان میں ٹفن لا کے رکھ دو، خود چلے جاؤ. ایسے نہیں. مولا کائنات بتاتے ہیں، تو ایک شخص آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، دسترخوان مولا کائنات نے بچھایا، کھانا چنا مولا کائنات نے، بیٹھے، जब खाना खा चुका तो हाथ धुलाने के लिए खुद मौलाए कायनात बढ़े मेहमान का। मेहमान परेशान हो गया, या अली ये मुझसे नहीं हो सकता कि आप मेरा हाथ धुलाएं। कहा नहीं, ये फरीजा है मेरा, तुम मेरे मेहमान हो। अब जब नौबत आई उसके बेटे की तो कहा मोहम्मद हनफिया तुम इसका हाथ धुलाओ। अल्लाह अकबर, ए मोहम्मद हनफिया तुम इसका हाथ धुलाओ। और उसके बाद उस लड़के से कहा बेटा अगर तुम अकेले आए होते तो तुम्हारा हाथ भी मैं ही धुलाता, लेकिन चूंकि तुम अपने बाप के साथ आए हो इसलिए बाप की अहमियत का ख्याल रखते हुए मैं मजबूर हूं कि अपने बेटे को हुक्म दूं कि बेटा तुम्हारा हाथ धुलाए। पहचाने, यह मुरव्वत। इब्राहिम क्यों जवान है? इसलिए कि इब्राहिम ने अहद कर लिया है कि हम उस वक्त तक खाना खाएंगे ही नहीं जब तक किसी को अपने दस्तरखान पर बैठा के खाना न खिला ले। ये कौन है? ये मुरव्वत है। अगर इंसान में मुरव्वत पाई जाती है, किसी कोई आया आपके पास काम के लिए, अब ये बस निकलेगी तो निकलती चली जाएगी। कोई आया आपके पास काम के लिए, आप नहीं कर सकते, आपने उसको ऐसे झिड़का जैसे वो वाजिब कत्ल हो, काम नहीं करना है, उसको समझा के आप भेज दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा काम। इन बशाशतुल मुरव्वत, ये गलामत, बशाशतुल वज हिबालतुल मुवद्दा, चेहरे की खुशरुई, खंदा पेशानी, हंस के मिलना मोहब्बत का फंदा है। अगर दूसरों को अपना बनाना चाहते हो तो मुरुव्वत पैदा करो। जिसके पास मुरुव्वत नहीं है वो जवान नहीं हो सकता है। जिसके दिल में दर्द नहीं है दूसरों के लिए वो जवान नहीं हो सकता है। मुरुव्वत जिसके दिल में होगी वो फुतुव्वत के दर्जे तक पहुंच जाएगा। जो फुतुव्वत के दर्जे तक पहुंच जाएगा वो विलायत के दर्जे तक पहुंच जाएगा। कैसे हासिल होती है? अब फुतुव्वत किसे कहते हैं? पहचानिए, जवान पहचाने, उसकी जवानी की अलामत क्या है? अल फुतुवतो बजलुन नदा व तरकुश शकवा। फुतुवत किसे कहते हैं? जवान मर्दी किसे कहते हैं? जिसमें सखावत पाई जाती हो, जिसमें सखावत पाई जाती हो उसे जवान कहते। बजलुन नदा, जिसमें इस बात की सलाहियत पाई जाती हो कि वो दूसरों को देने की तमन्ना रखता हो, तो ऐसा शख्स वो है कि जिसे शरीयत कहती है कि ये जवान है। तरकुश शकवा, जवान वो है जो हर वक्त शिकायत ना करता रहे, हर वक्त शिकवे की जबान ना हो जिसकी मुंह में, अरे जनाब हालात ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अरे जनाब मुश्किलात ऐसी हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, माहौल इतना बिगड़ गया है कि कुछ किया नहीं जा सकता है, हमें तो मौका ही नहीं मिलता है कि हम कुछ कर सकें, अम्मा ने हमारे लिए क्या किया, अब्बा ने हमारे लिए क्या किया, जो कुछ किया हम नहीं किया, पढ़ाई लिखाई मेरी तरफ से हुई, बस जैसे ही हम बड़े हुए सब काम खुद से करने लगे, माहौल की मुश्किल है। हम जिस समाज में रहते हैं आप नहीं जानते उसकी परेशानी क्या है, समाज में जिसमें रह रहे हैं उसमें अपने आप को ऐसा बना के चलना है कि जो समाज कहे वो करे, नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि पर्दा करो, पर्दा जो औरत ना करे उसके शौहर पर लानत, ये सब बातें आप कह रहे हैं लेकिन अमली मैदान में कहां हो पाएगा? हम रहते हैं बांद्रा जैसे पोस्ट मॉडर्न एरिया में, वहां कहां पर्दा मुमकिन है? वहां कहां हिजाब मुमकिन है? हमें लोग तानाजन होंगे, हमें लोग बुरा कहेंगे, अपनी इज्जत भी तो बचानी है, अपने स्टेटस को भी तो देखना है। मुश्किलात है, जमाना ऐसा है, ऐसी बुरा जमाना है, हम तो चाहते हैं कि पर्दा करें लेकिन कहां ऐसे हालात है कि हम पर्दा कर सके? ये क्या है? ये शिकवे की जबान है। यानी जितना गुनाह है सब जमाने का है। कयामत का दिन जब आएगा सारा आजाब खुदा जमाने पर डालेगा, हम पर कुछ करेगा नहीं। मतलब इसका यही हुआ ना, जो कुछ कर रहा है बेचारा जमाना कर रहा है। लेकिन जवान वो है जो शिकवा नहीं करता है, बल्कि जवान वो है जो माहौल को बदलने की कोशिश करता है, जवान वो है कि जो हालात को बदलने की कोशिश करता है। बुरे जमाने में भी जवान में ये खसूसियात पाई जाती है कि हालात के धारे को मोड़ दे, जवान में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो मुकाबला करते हुए इस तरीके से मर्द मैदा बना हो कि जब लोग 360 खुदाओं की पूजा कर रहे हो, जब अपने हाथ के बनाए हुए हलवे को खुदा मान रहे हो, सुबह में उसी हलवे की पूजा कर रहे हो, दोपहर में उसी को खाने के तौर पर खा जाते हो, ऐसे बुरे माहौल में, ऐसे बुरे जमाने में एक को खड़ा करके नमाज पढ़वाना और उसके बाद कहना बेटा तुम भी इसके पीछे नमाज पढ़ो, जाफर तुम भी इसके पीछे नमाज पढ़ो, तालिब तुम भी इसके पीछे नमाज पढ़ो, माहौल कह रहा है कि 360 खुदाओं को मानो, माहौल कह रहा है कि हाथ के बनाए हुए हलवे को खुदा मानो जिसे दोपहर में खाने के तौर पर खा लो, लेकिन तौहीद कह रही है, मुरुवत कह रही है, जवान मर्दी कह रही है, फुतुवत कह रही है, एक खुदा को मानो, वाहिद खुदा को मानो, किसी और को न मानो, और जो सामने आए उसको ललकार के कहो जो मेरे मोहम्मद का मुकाबला करेगा उसको दुनिया से निस्तो नाबूद कर दूंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। ये जवान इसकी हड्डियां सुस्त नहीं होती हैं कि अगर इसका मुकाबला करने के लिए कोई आता है तो आवाज देता इजलिस या आवर, एक काने बैठ, मेरे भतीजे को जो कहना है कहने दे। इतनी जुरत कमाती है। जब तक के इंसान में जवां मर्दी ना हो, हालात का मुकाबला करने की सलाहियत ना हो, ये जो दुनिया कहती है अरे अली का ईमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काबिले एतबार नहीं है, बचपने का ईमान भी कोई ईमान होता है? 10 साल के सिन में ईमान लाए थे। बूढ़ों का ईमान देखिए, पुख्ता ईमान। अब उसको चेंज करना, कब बच्चों में अली ईमान लाए? सबसे पहले बूढ़ों में बड़े हजरत, फिर छोटे हजरत, फिर फला हजरत, ये ईमान लाए। तो ईमान बचपने का क्या होता है? मैं कहूं कि जिसकी समझ में बचपना और बुढ़ापा और जवानी आए वही तो ये बात कहता है कि फला साहेब बूढ़े बुढ़ापे में ईमान लाए, उनका ईमान पुख्ता है। मैं कहूं उस ईमान की दाद दो, उस बचपने के कमाले फहम की दाद दो जो नुक्ते दीनो तौहीद बूढ़े बूढ़ों के जहन में ना आया। सलाम उस जवानी पर जवानी की समझ में आ गया। सलावत भेजिए मोहम्मद। तौहीद बूढ़ों के समझ में नहीं आने की है, तौहीद जवान ही के समझ में आती है। फिक्री शोर जिसका ना हो, इसलिए आज तक तौहीद समझ में ना आए। खुदा हाथ वाला भी हो गया, पैर वाला भी हो गया, कान वाला भी हो गया, बालों वाला भी हो गया, दाढ़ी वाला भी हो गया, क्यों? इसलिए बूढ़ापे में तौहीद मानी थी, इसलिए खुदा। तो जवान कौन है? जो हालात का शिकवा ना करे, समाज का शिकवा ना करे, बल्कि माहौल को बदलने की कोशिश करे। हम तो ये नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं छोड़ सकते ये काम? इन हराफी रविश को क्यों नहीं छोड़ सकते? दादा के जमाने से ये काम होता चला आ रहा है, कैसे छूट जाएगा? परदादा के जमाने से ये काम होता चला आया है, ये छोड़ नहीं सकता है। अच्छा, ये कौन कहता है कि हम ये नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कि हम दादा के जमाने से करते चले आए जिसमें बुढ़ापा पाया जाता है, जो बूढ़ा होता है वो ये कहता है। फिक्री एतबार से जो बूढ़ा होता है वो कहता है लकद बजन ना ले आबा ना, अरे हम अपने बाबा दादा को तो यही करते चले आए, तो कुरान कह रहा हम ये नहीं करेंगे। कुरान कहता है क्या तुम्हारे बाप दादा अगर गलत करते चले आए तुम भी गलत करोगे? नहीं, तुम जवान नहीं हो सकते हो। क्यों जवान नहीं हो सकते? इसलिए तुम जवान नहीं हो सकते हो कि तुम में गलत चीजों की पैरवी की आदत हो गई है। तुम गलत चीजों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, फिर तुम कुरान के जवान नहीं बन सकते हो। तुमको खौफ है समाज का, तुमको खौफ है घर का, तुमको खौफ है कबीले का, तुमको खौफ है सोसाइटी का, समझ रहे हो लेकिन बोलने से डरते हो। क्यों? इसलिए कि बोलेंगे तो घर से निकाल दिया जाएगा, बोलेंगे तो खाना पानी बंद हो जाएगा, बोलेंगे तो सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, भाई गाउट हो जाएगा। कौन बोले अपनी जान पर? कहा फिर तुम कुरान के जवान नहीं बन सकते, फिर तुम असाबे कहफ की रविश पर नहीं चल सकते। उनके पास दौलत भी थी, हुकूमत भी थी, सरवत भी थी, वजीर भी थे, बादशाह के खास भी थे, सब कुछ थे, लेकिन तौहीद को परख लिया था, उलूहियत को पहचान लिया था, माबूदे हकीकी को पहचान लिया था, तो दौलत को भी ठोकर लगाई, सरवत को भी ठोकर लगाई, हुकूमत को भी ठोकर लगाई। कहा कि हम मानेंगे तो फकत एक खुदा को, और न फकत ये कि हम मानेंगे बल्कि अपनी कौम को भी एक खुदा मनवाएंगे। तब तुम जवान हो गए। छठे इमाम क्या फरमाते हैं जवानों से? जवानों, जवानी चाहिए, क्या करोगे? जो बाप दादा करते चले आए थे वही करोगे, वही करोगे, तो तुम जवानी। या माशर अल अहदास मुखातब मासूम, ए जवानों, इत्तकुल्लाह, तकवा इलाही अख्तियार, अपने आप को बचाओ। जवान वो है जो अपने आप को हर चीज से, दुश्मन से महफूज रखे। तकवा किस चीज का नाम है? तकवा फकत तस्बीह चलाने का नाम नहीं है, ये पूरी मुश्किल है हमारे साथ। तकवा किसे कहते हैं? हमारे साथ मसाइल यही है, हमारे साथ मुआशरे और समाज की मुश्किल। दीन को इस तरीके से ट्विस्ट करके पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि सही बातें समझ में नहीं आती। तकवा नाम है अपने आप को बचाने का, सिपर रखने का, ताकि कोई हमला करे तो हम महफूज रह सके। अब हमें जितनी ताकत, तकवा कहां से शुरू होता है? तकवा कहां से शुरू होता है? हम शुरू करते हैं मुस्तहबात से, और बाज लोग मकरूहात से। जो चीजें अगर अंजाम न दें तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वाजिब की हमें फिक्र ही नहीं होती, हराम की हमें फिक्र ही नहीं है। का तकवे का सबसे पहला दर्जा यह है कि वाजिबात को अंजाम दो, जो चीजें हराम है उसे छोड़ दो। इस दर्जे पर पहले पहुंचो, तब तुम तकवे के दर्जे तक पहुंचोगे, वरा के दर्जे तक पहुंचोगे। नमाज कदा ना हो, रोजा, इबादतें, मां बाप की फरमा बरदारी, ये सारी चीजें जो वाजिबात हैं उसको अंजाम दो, ये तकवा इस दर्जे तक पहले पहुंच जाओ, फिर दूसरी चीजें अंजाम दे लो। हम कहां से शुरू करते हैं? आज नाखून ना काटा जाए, परसों फला ना किया जाए, परसों, यही सारी चीजें, इसके ऊपर सारी अहमियत है। आए आए आज नाखून ना काटना, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मकरूह है? ऐसे नहीं है, नहीं मकरूह है, ऐसा नहीं कि मकरूह नहीं है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां देखो 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 देखो, हम कलेजी नहीं खाते, क्यों? मकरूह है, हराम गजाएं खा रहे हैं लेकिन हम मकरूह है कलेजी नहीं खाते, ये कौन सी चीज है? ये वो चीज है जो इंसान को कमाल तक नहीं पहुंचाती है। बाज लोगों का तकवा बिल्ली का तकवा होता है। बिल्ली का तकवा देखा आपने? बिल्ली जब पानी देखती है हौज में तो करीब नहीं जाती है, डरती है, और जैसे ही उसमें चूहा या कोई गोश्त या कोई ऐसी चीज देखते फौरन पानी में गोते लगा लेती है, फिर उसको नहीं डर लगता है पानी से। हम में से बाज लोगों का तकवा ऐसे ही है। हराम काम में बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा ही दिन चलता है। जैसे ही कोई प्लान आया, कोई प्लांट आया, कोई चीज आया, अब तो उसमें हम दाखिल हो गए। इसमें कितना हराम है, कितना हलाल है, कितनी मुश्किल है, ये सब कुछ नहीं, हमें बस दीन तो मस्जिद में है। मस्जिद में है तो हमसे बड़ा कोई दीनदार नहीं। हुसैन हुसैन हमारी जबान से सुन लो, इमाम जमान हमारी जबान से सुन लो। जब मामलात में आए, कारोबार शुरू किया तो उसमें रेबा का कारोबार हो, उसमें गाने का कारोबार, सीडी रखे हुए, लोहे की भी सीडी है, गाने की भी सीडी है, समझे क्या मतलब है? ले जाने वाला ले जा रहा है, होटल खोले हुए हैं, काम करने वाला सब वो है जिसका हाथ का खाना हराम है, بھئی یہ تو لوگ مختلف آ رہے ہیں ہم سے کیا مطلب، یہ تو ہمارا شخصی میٹر ہے، یہ دین کا میٹر تھوڑا یہ سمجھے ہی نہیں. جو غذا جاتی ہے منہ کے اندر وہی رمق حیات بن کے نکلتی ہے. جب منہ کے اندر حرام کھانا جائے گا تو ممبر خطیب ممبر سلونی والا خطیب نہیں ہوگا، شام کے دربار والا خطیب ہوگا جو زین العبا کو خطابت نہیں کرنے دے گا. اگر حلال تک پہنچنا ہے، اگر تقوی تک پہنچنا ہے، اپنی غذا کو حلال کرو تاکہ منہ سے جو نکلے اس میں ہدایت پائی جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہوٹل بھی چلتا رہے، ہوٹل میں گانا بھی ہوتا رہے، ہوٹل سے پیسہ بھی آتا رہے، ناجائز پکانے والا بھی ہو، حرام پکانے. اے بھائی فلاں صاحب نہ جائیے ہوٹل میں، کیوں نہ جائے؟ اگر نہ بھی جائے تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب دین سنیے تو آپ سے بڑا کوئی حسینی نہیں، آپ سے بڑا کوئی امام زمان کا ماننے والا نہیں. وہ تو شخصی میٹر ہے. شخصی میٹر کیا ہوتا ہے؟ دین میں ساری زندگی ہماری خدا کی ہے. یہ کیا ہے؟ دین زبان پر ہے جس کو سرکار سید الشہداء نے کہا. بوڑھے لوگوں کا دین ہے یہ. الناس عبید الدنیا، لوگ تو دنیا کے غلام ہیں، جوان تھوڑے ہیں، یہ بوڑھے ہیں. والدین لیخن علی السنتہم، اور دین تو ان کی زبان کا چٹخارا ہے، چٹنی کی طرح مزہ لینے کے لیے. تو تین غذا ہے، ساتھ میں مزہ لینے کے لیے دین کا بھی نام لے لو. والدین لیخن علی السنتہم، کب تک دین؟ ما درت معیشہم، جب تک دنیا چلے، جب تک روٹی کپڑا مکان چلے دین ہے، جب تک کاروبار حیات چلے اس وقت تک دین ہے، جب تک بزنس چلے دین ہے. وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا، اور جب امتحان کی منزل گاہ میں آئیں گے، جب حالات کے بھمر میں پھنسیں گے، جب امتحان کی بھٹی میں ڈھالے جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا قلت دیانون، تو دیندار بہت کم دکھائی دیتے ہیں، بہت کم دکھائی دیتے ہیں. بھائی یہی جوان ہیں. پورا لشکر حسین کے ساتھ چلا، کربلا 72 پہنچے جو دیندار تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آزمائش کی بھٹی میں آزمائے جا چکے تھے. یہ وہ نہیں تھے جو مال کے لیے نکلے، جن کی زبان پر دین ہو، نہیں، جن کے دل میں دین اتر چکا تھا. یہ جوان تھے. اس لیے پورے کسی کو، نہ اصحاب رسول کو جوان کہا حسین نے، نہ اصحاب علی کو جوان کہا حسین نے، نہ اصحاب حسن کو کہا جوان. کیا کہا؟ کس کو کہا؟ اس لیے کہ علی پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے بھی بعض وہ تھے جو دیکھنے میں جوان تھے لیکن بوڑھے تھے. قرآن کہہ رہا ہے اصحاب رسول کے بارے میں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جب تجارت دیکھتے ہیں تو رفو چکر ہو جاتے ہیں، یہ جب بزنس دیکھتے ہیں ان کا دین اتنا نہیں ہے. جب تک اظہار ہو تجارت رکو کا قائم، چھوڑ دیتے ہیں آپ کو تنہا. نہیں، یہ جوان نہیں ہے صاحب، یہ بوڑھے. جو نبی کو ایک تجارت کے نام پر چھوڑ دے وہ جوان کب ہوگا؟ جوان تو فقط ایک ہوگا جو نرغے آدم میں تنہا نبی کو نہ چھوڑے، وہ ہے جوان. نہیں، کربلا والے جوان لا خیر فی العیش بعد هؤلاء الفتیا، ان جوان مردوں کے بعد تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا. یہ جوان ہے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو نہیں خریدا ہے، انہوں نے دین کو خریدا ہے. یہ جوان. اتقوا اللہ ولا تاتوا الرؤساء، اور دیکھو اپنے قبیلوں اور اپنے سماج کے مکھیا کی پیروی نہ کرو. جوانوں دعو ہم، چھوڑ دو انہیں. جوانوں جو فکر کے بوڑھے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو سماج کی رسموں کے بوڑھے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو دین کے نام پر انحراف پھیلا رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو غیبت کے زمانے میں انحراف کا راستہ دکھا رہے ہیں انہیں چھوڑ دو. حتی یسیرو اذنابن، تم دوسروں کے راستے پر چلنے والے نہ بنو، تم دین کے راستے پر چلنے والے بنو. जो दीन ने तुम्हें रास्ता बताया उस पर अपना कदम रखो, ताकि दूसरे आए तो तुम्हारे नक्श कदम पर चलें। यह है तुम्हारी जवानी का कमाल। तुम रस्म और रिवाज के नक्श कदम पर ना चलो, तुम दीन के नक्श कदम पर चलो, ताकि दूसरे आए तो तुम्हारे नक्श कदम पर चलें। ला तत्तखज़ुर रिजाल मिन दूनिल्लाह। देखो, अगर इत्तेखाज़ करना है, लेना है, तो फकत खुदा के जमा मर्दों के साथ रहो। ये जवान से दरखास्त है छठे इमाम की कि देखो, समाज और माहौल और हालात के शिकंजे में फंसकर समाज की असीर न बनना, बल्कि समाज की, मुआशरे की, सोसाइटी की गुलामी से निकलकर दीन का रास्ता कौम और मिल्लत को पेश करो, ताकि तुम्हारे नक्श कदम पर दूसरे चले। तुम जवान हो, किसके ऊपर काम करो? का बूढ़ों पर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया